SBS हिंदी।
1600 गोलियां, 1000 से ज्यादा निहत्थे निर्दोष बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की लाशें और हिंदुस्तान की आत्मा दहल उठी। तेरह अप्रैल 1919 शाम के करीब 5 बजे बैसाखी के शुभ अवसर पर अमृतसर के पवित्र शहर के जलियांवाला बाग में हुआ कत्लेआम। उस हृदय दहला देने वाली घटना ने हिंदुस्तान के लोगों के मनोमस्तिष्क को झकझोर के रख दिया और आज़ादी की जंग को एक दृढ़ गति मिली। देश के क्रांतिकारियों के हौसले और भी बुलंद हुए। तो क्या था जलियांवाला कांड? ऐसा है कि 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर के एक बंजर मैदान में, जिसके इर्द गिर्द खूब सारी इमारतें थीं और एक ऊंची ऊंची दीवार उसके चारों ओर बनी हुई थी, वहां पर लोग अमृतसर ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों से भी बैसाखी मनाने आए थे और कुछ लोग शांतिपूर्ण ढंग से हिंदुस्तान के कुछ राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी पर चर्चा करने भी पहुंचे थे। इस घटना के 100 साल बीत गए हैं, मगर आज तक ये तय नहीं हो पाया कि कितने लोग मरे और उस भीड़ में कितने लोग कुल शामिल थे। कुछ लोग कहते हैं कि 20,000 लोग उस मैदान में थे और कुछ लोग कहते हैं 30,000। अलग अलग प्रकार के बयान मिलते हैं। उन दिनों पंजाब में ब्रिटिश हुकूमत का मार्शल लॉ चल रहा था। लोग प्रार्थना करने स्वर्ण मंदिर पहुंचे थे, बैसाखी का दिन था, और कुछ लोग वहां जलियांवाला बाग घूमने चले गए थे। उन दिनों देश भर में और ख़ासतौर से पंजाब में लोगों में बेहद रोष था और कुछ दंगे फसाद भी चल रहे थे, जिनके कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर को 600 फौजी दलों के साथ 11 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर भेजा था। और फिर 13 अप्रैल को हुआ ब्रिगेडियर जनरल डायर के हाथों जलियांवाला बाग में कत्लेआम। लेकिन आइए पहले जानते हैं कि जलियांवाला के नरसंहार से पहले क्या कुछ हुआ था। इस विषय पर बेहद रिसर्च की है श्री अजीत सॉमर्स ने, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के पूर्व सदस्य रह चुके हैं और नेल्सन मंडेला के साथ कार्य भी कर चुके हैं। अजीत सॉमर्स बताते हैं,
द ब्रिटिश राज एक्सपीरियंस्ड रोलिंग मैस एक्शन in the form of resistance and mass mobilization of people against British rule. The state of Punjab was a hotbed for such agitation. To quell the situation specifically, the British authorities passed the Rowlatt Act on the 18th of March 1919, which gave the colonial administration a wide range of unlimited powers of detention, repression, and tyranny. Mahatma Gandhi made a proposal and plea that such draconian laws be immediately withdrawn forthwith, and he called for general mass action.
आम लोगों को पता नहीं था कि जनरल डायर ने 3 लोगों से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी थी। किसी भी जुलूस, सम्मेलन वगैरह पर भी रोक लगा दी गई थी। तो 20,000 लोग बैसाखी मनाने और रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए राष्ट्रीय नेताओं की रिहाई के लिए शांतिपूर्ण वार्ता के लिए जलियांवाला बाग पहुंचे थे। जनरल डायर करीब 5 बजे उस सभा में 40 सैनिकों के साथ घुस आए और भीड़ को कोई भी चेतावनी दिए बगैर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। बाग का एक ही प्रवेश द्वार था, जिसे उसने बंद करवा दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तब तक फायरिंग करते रहें जब तक बंदूकों में एक भी गोली ना बचे। हर गोली किसी के सर पर या सीने पर दागी जानी चाहिए और 10 मिनटों तक लगातार फायरिंग होती रही। हाहाकार मच गया। बच्चे, वृद्ध पुरुष, महिलाएं भागने की कोशिश करने लगे, मगर बाहर जाने का कोई रास्ता न था। ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 379 लोग मारे गए और 1137 लोग घायल हो गए थे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुताबिक कम से कम 1000 लोग मारे गए थे और 1500 लोग घायल हो गए थे। वहां बाग में एक कुआं था। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में भी कूद पड़े और कुएं में से 100 ज्यादातर बच्चों की और महिलाओं की लाशें मिली। शहर में कर्फ्यू भी था तो घायलों को अस्पताल भी नहीं पहुंचाया गया। बहुत से बच्चे भी कत्ल हो गए इस खूनी बैसाखी में। और बाद में जनरल डायर ने इंक्वायरी में कहा कि घायलों को अस्पताल पहुंचाना उनका काम न था। अब आइए देखते हैं कि जलियांवाला बाग घटना की भारत में, हिंदुस्तान में और इंग्लैंड में क्या प्रतिक्रियाएं हुई। अजीत सॉमर्स बताते हैं।
The Jallianwala Bagh massacre was a watershed in Indian politics and helped mobilize and unite the people of India who did not think previously about their identity before that fateful Sunday, 13th of April, 1990. Now, the Nobel Prize winner for literature and India's poet laureate, Rabindranath Tagore, returned his knighthood to the British king. Now, it must be remembered that Tagore received the literature prize for beating celebrated British author Thomas Hardy, whom the disappointed British Literary Society nominated. Now, this massacre, it ingrained in Mahatma Gandhi an unflinching resolve and undiluted faith in the freedom struggle against colonial rule. And the other thing is that because the country was so united against the British colonial authorities, the British colonial authorities decided to divide the population of India. It played Muslim against the Hindus.
And what was the reaction of Britain to General Dyer's action?
They rejoiced at this massacre because up to this day, the British government did not apologize to India and the Indians for this monstrosity, this treachery. They promoted Brigadier Dyer to colonel in the army.
जनरल डायर की करतूत की छानबीन के लिए हंटर कमीशन बिठाई गई, जिसमें डायर ने कहा, और मैं कोट करती हूँ, आई फायर्ड एंड कंटिन्यूड टू फायर अंटिल द क्राउड डिस्पर्स्ड एंड आई कंसिडर दिस एज द लीस्ट अमाउंट ऑफ फायरिंग विच वुड प्रोड्यूस द नेसेसरी मॉरल एंड वाइड स्प्रेड इफेक्ट। इट वॉज माई ड्यूटी टू प्रोड्यूस इफ आई वॉज टू जस्टिफाई माई एक्शन। लेकिन बाद में 8 मार्च 1920 में हंटर कमीशन ने डायर को दोषी ठहराया और कहा कि वो बिल्कुल गलत थे और अपनी सीमा को पार कर गए थे। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि पंजाब में ब्रिटिश शासन को ख़त्म करने की कोई भी साजिश नहीं थी। जनरल डायर की निंदा विंस्टन चर्चिल ने भी की। अक्सर ब्रिटिश हुकूमत से भारत ने मांग की है कि वो इस नरसंहार के लिए माफ़ी मांगे। हमने इसके बारे में पूछा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर अमनदीप बल से। वो कहती हैं,
ये तो अपने अपने सोचने और समझने की बात है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे जगह हैं हमें जहाँ पर दिखता है कि माफी मांगी गई है, वो ऐसा कुछ फर्क तो नहीं पड़ता। पर कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं, कुछ लोग इस इश्यूज के साथ जुड़े होते हैं, एक इमोशनल आप कह सकते हो कि इशू है, और उनको लगता है कि फॉर्मली, क्योंकि उस टाइम पे ये कहा गया कि ये जो किया गया सही था।
जी, जी.
आधी जो ब्रिटेन की पॉपुलेशन है हम जानते, आप भी जानते, वो जनरल डायर और माइकल ओडवायर के साथ थी। चाहे देवर लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं उन्होंने कहा कि जो हुआ सही नहीं हुआ, पर इतने लोगों ने उनको सपोर्ट किया और जो डायर के लिए फंड इकट्ठा हुआ वो इतना ज्यादा था, अनइमेजिनेबल था।
ब्रिटिश सरकार ने इस नरसंहार पर कई बार शोक तो व्यक्त किया है लेकिन अभी तक कभी माफी नहीं मांगी है। मैंने पूछा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष अमनदीप जी से कि क्या आज भी भारत में नौजवानों का, लोगों का इस घटना को लेकर खून खौलता है। वो बताती हैं,
जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी जलियांवाला बाग जाता है, क्योंकि जलियांवाला बाग के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है और जो जब वहां जाते हैं तो जो आम आदमी है जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल जागृत नहीं है, उसका भी मन खोलता है, वो भी हो जाता है, डर हैरान हो जाता है कि ऐसे भी होता था, जैसे भी हो सकता था, क्योंकि ये एक ऐसी बात है कि लोगों को समझ कभी नहीं आती कि ऐसे कैसे हो गया कि निहत्थे लोग जो बाग में हैं तो उनके ऊपर गोलियां बिना सोचे समझे गोलियां चला दी और फिर चले गए, जैसे कि वॉर में होता है।
इस नरसंहार को देखा 13 वर्षीय शहीद उद्धम सिंह ने। खून से लथपथ जलियांवाला बाग की मिट्टी को हाथों में उठाकर उन्होंने प्रण लिया कि वो जनरल डायर को ख़त्म कर देंगे और उन्होंने 20 साल बाद अपना प्रण निभाते हुए 13 मार्च 1940 में डायर को लंदन में शूट करके मार दिया। जलियांवाला नरसंहार पर साहित्य में बहुत कुछ कहा गया, लिखा गया है। खून से रंगे इस काले अध्याय को लेकर कई कविताएं भी लिखी गईं। हमें कविता की कुछ पंक्तियां सुना रही हैं अमृतसर के BBK DAV कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर पुष्पिंदर वालिया।
जो एक पोएम जो आजकल बहुत चर्चा में है वो नानक सिंह, जो पंजाबी नॉवलिस्ट जिनको कहा जाता है, उन्होंने पहली पंजाबी नॉवल लिखी, बहुत मशहूर साहित्यकार थे और उन्होंने ये पोएम लिखी थी खूनी वैसाखी। तो इस टाइटल को यूज करके कई प्लेज भी किए जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है सेंटिनरी में। तो नानक सिंह सिर्फ 22 वर्ष के थे जब वो जलियांवाला बाग के जो हादसे में वो शरीक हुए थे और वो बेहोश हो गए थे, अपने दो दोस्तों के साथ गए थे वहां पे और दोनों दोस्त उनके जो थे वो शहीद हो गए, लेकिन ये बेहोश हो गए एंड वहां पे गिर गए एंड इनकी जो उस वक्त अनकॉन्शियस स्टेट में ये डेड बॉडीज के नीचे दब गए और जब इनको होश आया तो ये एक इस तरह के ट्रॉमा में चले गए और जिसमें से उन्होंने जब ये खूनी बैसाखी लिखी तो ये एक ऐसी पोएम थी जो एक उनके लिए कैथारसिस भी थी और एक पेट्रियोटिज्म का जज्बा जो था वो भी था। इस पोएम को लेके काफी चर्चा होती है आजकल भी और उस जमाने में भी हुई और ये पोएम उस लिटरेचर में से थी जो कि बैन कर दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी ये पोएम भी और इसके लिए नानक सिंह को जेल भी हुई थी, तो ये कहा जाता है। तो मैं आज उस खूनी बैसाखी पोएम की कुछ पंक्तियां आपको सुनाने चाहूंगी। ये एक्चुअली एक काफी लंबी पोएम है जिसकी कुछ पंक्तियां ही इस वक्त मैं आपको सुना सकती हूँ। इसके कई पार्ट्स हैं जिनको उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स दिए हैं, जैसे कि पहला रामनवमी द जिंदा हाल और उसके बाद में उन्होंने, बिकॉज ये आपको पता होगा जो हिस्ट्री है कि रॉलेट एक्ट के बाद ये प्रोटेस्ट किया गया था उसके करके ये सारा हादसा हुआ। तो जिस दिन डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को गिरफ्तार किया गया उसके बाद ये सब कुछ हुआ प्रोटेस्ट के लिए, तो उन्होंने ये हादसा जो लिखा तो उसके बीच में उन्होंने इस तरह से पेश किया है। 5 अप्रैल दी 13वीं, मतलब कि 13 अप्रैल को 5 बजे शाम को लोकी बाग वल होए रवान चले, दिलां विच इंसाफ दी आस रख के सारे सिख हिंदू मुसलमान चले, सब बाल ते बिरद जवान चले, अज दिलां दे दुख सुनान चले, सगों अपने गले कटवान चले, इसके जो पॉइंट आउट किया गया है, सारी कम्युनिटीज के लोग वहां पहुंचे हैं। जलियांवाला बाग इसलिए ये जो हादसा है एक तरह से इंटरफेथ यूनिटी का भी एक सिंबल बन चुका है, क्योंकि सब लोग इसमें पहुंचे थे। और बैसाखी का त्यौहार, चाहे हम एक हिंदू या सिख त्यौहार मानते हैं, पर मुसलमान भी उसमें सब पहुंचे थे। तो सब तरह के, सब एज ग्रुप के लोग पहुंचे थे, बाल वृद्ध जवान सब पहुंचे थे। और उनको ये पैथोस इस पोइट्री में ये है कि उनको नहीं पता था कि वो किस पर्पज से किस मौत के मुंह में जा रहे हैं।
लंदन में रहने वाले अमनदीप सिंह मद्रा और परमजीत सिंह साहब ने आई विटनेस एट अमृतसर अ विजुअल हिस्ट्री ऑफ द 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर नाम की पुस्तक जारी की है। वो बताते हैं अपनी पुस्तक में कि 1920 में हिंदुस्तान के लोगों ने जलियांवाला शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कई पोस्टर जारी किए। उनमें से एक पोस्टर पर लिखा गया था पंजाबी में, खातिर अपने देश दे होवा जो कुर्बान, खातिर अपने देश दे जो होवा कुर्बान, मरदे नहीं ओ जोंदे रोशन विच जहान। जलियांवाला बाग विच होया जुल्म पार, जलियांवाला बाग विच होया जुल्म पार, हिंदू मुस्लिम सिख कर दे हाहाकार। यानी जो लोग अपने देश के लिए कुर्बानी दे देते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं, और जो अत्याचार जलियांवाला बाग में हुआ उस पर हिंदू मुस्लिम सिख सभी हाहाकार करते हैं, रोते हैं दुख के मारे।
आपके विचार हमें बताएं। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।